దశయ చావదీహిరం పడమజినం వోక్షమణమి ఊణంతరం అనంతరుత్తుంగ సన్నమై దుర్గేజం. యహ శ్రీ వీరసేనాచార్య రచిత ధౌలా టీకా హై జో షట్ఖండాగమ గ్రంథ పర్ లిఖీ హుయీ హై జిస్కే కర్తా హై భూతబలి ఔర్ పుష్పదంత ఆచార్య జిన్హోనే శ్రీ ధర్సేనాచార్య కే ఉపదేశ్ కే అనుసార్ ఇస్కీ రచనా కీ థీ. जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है. अब पांचवी पुस्तक में 107 पृष्ठ पर आए हैं. अंतरानुगम की बात चल रही है और उसमें भी हम मार्गणाओं की बात चल रही है. वेद मार्गणा की अपनी बात यहाँ प्रारंभ हो चुकी है. तब ये नपुसक वेदी मिथ्या दृष्टियों का अंतर हमने कल देखा था. तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा ही मिथ्या दृष्टि की है, हमेशा ही होंगे. अब एक जीव की अपेक्षा अंतर कहना है. वेद तो वही का वही रहना चाहिए, गुणस्थान पलटकर वापस उस गुणस्थान में आएगा तो एक जीव की अपेक्षा अंतर हो जाएगा. तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, ये तो हमने बहुत बार देखा था. जघन्य अंतर किसी गुणस्थान का कैसा निकालना. अब उत्कृष्ट अंतर यानी वेद तो वही रहना चाहिए और फिर मिथ्यात्व का अंतर यानी मिथ्यात्व में से अन्य गुणस्थान में जाना चाहिए और फिर वापस जब मिथ्यात्व में लौटेगा तो इस तरह से लेना है इसको. देखो ये हम पढ़ेंगे 209 नंबर का. उक्कसेण 33 सागरो वमाणी देसुनानी. एक जीव की अपेक्षा नपुसक वेदी मिथ्या दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम है. अभी उसको समझाते हैं. जैसे मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ. तो सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ तो मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया. तो प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त होकर यानी वो पूरी 33 सागर तक वो सम्यक तो सहित रहा, अंत में जाकर मिथ्यात्व में जाएगा. आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त होकर फिर आयु को बांध, सम्यक्त्व के साथ आयु नहीं बनती है, सातवां नरक का नारकी है. मिथ्यात्व में ही आयु बंद होगा, मिथ्यात्व में ही मरण होगा. तो पहले आयु को बांध, विश्राम ले, मरा और तिर्यंच हुआ. इस प्रकार 6 अंतर्मूर्तों से कम 33 सागरोपम नपुसक वेदी मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है. ये बात अभी हमने देख ली. अब सासादन की बात करेंगे. नपुसक वेदियों में सासादन गुणस्थान शासन सम्मादिठ्य पहुड़ी जाव अणियठी वसामगो ती मूलोगम. सासादन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण उपशामक गुणस्थान तक नपुसक वेदी जीवों का अंतर मूलोग के समान है. तो जैसे मूलोग में हम देखते थे नाना जीवों की अपेक्षा एक समय अंतर और फिर पल्ले का असंख्याता भाव, एक जीव की अपेक्षा वो आएगी अभी. बात पेज नंबर है 108. अभी हम 108 पर आ गए. 210 नंबर का सूत्र हमने पढ़ लिया है अभी अभी. अब उसका अंतर उसका अर्थ करेंगे क्योंकि उसका अंतर बता रहे. ये ओग के समान क्यों है उसका अर्थ बताते हैं. यानी ओग में क्या बात आई थी और यहाँ क्या है वो समानता यहाँ फिर दोहराएंगे क्योंकि हम भूल जाते हैं ना. तो कहते हैं नपुसक वेदी सासादन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय. ये तो हमने ओघ में भी ऐसा ही देखा था। और उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग। देखो नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग है, और एक जीव की अपेक्षा सासाधन का जघन्य अंतर पल्ल्य का असंख्यात्वा भाग। उतने काल तक वो दोबारा उपशम सम्यक तो नहीं कर सकता। अब एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये कुछ कम कैसा घटित होगा? सबसे पहले बार उसने औपशमिक समय तो प्राप्त किया, सासाधन में आ गया, गिरकर नीचे चला गया, सासाधन का अंतर चालू हो गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक रहा, वो मिथ्यात्व में भटका, अंतिम भव में अंत में फिर औपशमिक सम्यक्ति हुआ, फिर सासाधन में आया, तो अंतर उसका समाप्त हुआ। फिर जो बचा वो फिर मिथ्यात्व में जाएगा, समय तो प्राप्त करेगा, क्षयिक समय दृष्टि होगा, उसी भव में मोक्ष चला जाएगा। हमको अधिक से अधिक अंतर देखना है। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि का बात उसकी बात करेंगे। नपुसक वेदी सम्यक मिथ्या दृष्टि, पहले में पहले नाना जीवों की अपेक्षा अंतर बताएंगे। तो जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग, ये हमने बहुत बार देखा है। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर कहेंगे, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय, बहुत सारे जीव है तीसरे गुणस्थान में आते हैं और आगे चले जाते हैं, जैसे दो सासाधन में घटाया ना हमने, वैसे यहाँ पर नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीव की अपेक्षा तो जघन्य अंतर है, तीसरे से अन्य गुणस्थान में चला गया और वापस आया, तो एक अंतर्मूर्त होगा। तो सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम का असंख्यात्व भाग, ये नाना जीवों की अपेक्षा हुआ। और एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। तो ये अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल में कहाँ कहाँ भटकेगा वो? हाँ जा सकता है, देव में भी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा तो नपुसक वेद रहेगा। तो कुछ कम आयर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण, यानी वो जो जहाँ पुरुष वेद और स्त्री वेद दो ही वेद है वो तो हो नहीं सकता, ये नपुसक वेद का अपना चल रहा है प्रमाण। हाँ तिरेंच मनुष्यों में अभी नारके में भी चला जाएगा बीच में। हाँ क्योंकि एक इंद्रियादि में तो वो तो वही है वेद, चार इंद्रिय तक तो नपुसक वेद ही है, नारकियों में भी नपुसक वेद ही है, मनुष्य तिरेंचों में तीन हो सकते, तो अभी ये नपुसक वेद ही रहा, ऐसा ले सकते, बीच में एकाध भव भी करेगा नपुसक वेद के साथ करेगा। अब असंयत समय दृष्टि, यानी नपुसक वेदी असंयत समय दृष्टि, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा कोई ना कोई चौथे गुणस्थान में पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यानी चौथे गुणस्थान से अन्य गुणस्थान में गया और वापस आ गया, दृष्ट मार्गी कहा था ना, कम से कम समय अंतर्मूर्त में वापस आता है। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, वहां भी ऐसे ही समझना, उसका नपुसक वेद कायम है, यानी मुख्यतः तो एक इंद्रिय आदि में ही टाइम जाएगा उसका अधिक से। अब संयता संयत, संयता संयत का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि हमेशा ही संयता संयत में अन्य अन्य जीव पाए जाएंगे, इसलिए कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, अन्य गुणस्थान में चला जाएगा पांचवें से और वापस पांचवें में आएगा, तो ये जघन्य अंतर होगा। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी पहले भव में वो औपशमिक सम्यक्ति हुआ, पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया, फिर गिरकर वो चला गया मिथ्यात्व में, और अर्ध पुद्गल परिवर्तन भटककर अंतिम भव में फिर वो पांचवें में आया। अब प्रमत्त संयत की बात करेंगे, प्रमत्त संयत का नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा ही प्रमत्त संयत गुणस्थान में नपुसक वेदी भी होगी, तीनों वेद वाले जीव हमेशा ही होगी। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये तो आसान है ना, छठे का है, सातवें में जाके आया या अन्य भी गुणस्थानों में, तो उसको एक अंतर्मूर्त लेना। अप्रमत्त संयत का भी नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा ही ये छठे सातवां गुणस्थान हमेशा ही होता है, तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। तो ये जघन्य अंतर्मूर्त कैसा सिद्ध करेंगे हम? हाँ, अप्रमत्त से हाँ कहाँ जाएगा? हाँ, आठवें में भी जा सकता है, आठवें में जाएगा तो कहाँ जाएगा? हाँ, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरेगा, वापस सातवें में आया, तो कौन सा वाला जघन्य लेना, छठे में जाके आने वाला के ऊपर? पहले बात आई थी ना, उपशम श्रेणी के सभी गुणस्थानों की टोटल करेंगे, यानी आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां फिर दसवां नौवां आठवां फिर सातवें में आ गया, तो वो काल छठे से भी छोटा है, छठे का काल संख्यात गुणा है, तो ये जघन्य में उसको लेना। अपूर्वकरण का आठवें की बात है, अपूर्वकरण का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय, नपुसक वेद और अपूर्वकरण गुणस्थान ऐसा गया, तो जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से वर्ष पृथक्त्व। यहाँ अपूर्वकरण उपशामक वगैरह ऐसे अलग अलग नहीं किए, फिर भी वर्ष पृथक्त्व, क्योंकि हमने देखा था नपुसक वेद और स्त्री वेद के साथ ये श्रेणी चढ़ना, तो उनमें जीवों की संख्या कमी है, पुरुष वेद के साथ ज्यादा जीव हो गए, इसको अप्रशस्त प्रकृति कहा है, और उसके साथ अन्य ये विशुद्धि का होना थोड़ा दुर्लभ है, होता नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो जीव मोक्ष भी प्राप्त करेगा, परंतु ऐसे जीव कम है उसकी बात है। देखो अपूर्वकरण एक जीव की अपेक्षा बताएंगे, तथा एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त, यानी अपूर्वकरण छोड़ा और वापस अपूर्वकरण में आया, तो जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर है। हाँ, छठे का, हाँ छठे का काल है वो बड़ा है, संख्यात गुणा बड़ा है। ये जो उत्कृष्ट अंतर जब ये है, उत्कृष्ट अंतर अभी हमने देखा ना कितना अर्ध पुद्गल परावर्तन, वो कैसे हम समझेंगे? हाँ, कहाँ मरण होगा? श्रेणी में मरण होगा तो देव होगा, पुरुष वेद चालू हो जाएगा। हाँ, गिरेगा, तो इन्हें ऊपर चढ़ते वाला अपूर्वकरण नहीं लेना है ना, क्योंकि छोड़ा तो वापस अपूर्वकरण में आता है, यानी जहां से हम स्टार्टिंग करेंगे, जब उसको पहली बार वो उपशम सम्यक तो हुआ, नपुसक वेदी औपशमिक सम्यक तो हुआ, यानी श्रेणी चढ़ी, वो वापस लौटा अपूर्वकरण तक आया, और नीचे जाते उसका अंतर चालू हो गया, अब वहां से फिर गिर गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक कर वापस जब उपशम श्रेणी मान लेगा, तब उसको समझना, उसका अंतर समाप्त हो जाएगा।
ये जो आपने पूछा था कि जेपी साहब कि ये अंतर जो छठे गुणस्थान का है वो अधिक है, तो ये इसी पुस्तक में पेज नंबर 14, 18 और 19 पे ये बात आई है, इसी पुस्तक में।
इसी प्रकार अनिवृत्तिकरण का भी अंतर कहना चाहिए, अनिवृत्तिकरण से अनिवृत्तिकरण तक जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा, या अनिवृत्तिकरण से अपूर्वकरण में आते ही अंतर चालू हो गया, जघन्य में एक जीव की अपेक्षा जघन्य में लिखना उसको। अच्छा हाँ, ऊपर भी नहीं, बराबर है आपका कहना, ठीक है, वो जघन्य में नहीं लेना। पहले भी मैंने जो बात बताई वो गलत हो जाएगी, उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा है, जघन्य अंतर वापस उपशम श्रेणी चढ़ेगा, तो जघन्य अंतर फिर भी, यानी कहाँ से शुरू करना, उतरने वाले अपूर्वकरण से चढ़ने वाले अपूर्वकरण तक, वो जघन्य काल, क्योंकि उनकी वो मार्गणा नष्ट नहीं होनी चाहिए। नपुंसक वेदी से अपगत वेदी होता है, बराबर आपका कहना ठीक है। और जब बाकी तो है चढ़ के उतरा और वहां से हम शुरू करते हैं, क्योंकि वहां तो उसका नपुंसक वेद है, और फिर नीचे गया और अर्धपुद्गल परावर्तन नपुंसक वेद में रहा, ऐसे हो सकता है। चढ़न यानी वो जघन्य अंतर जो चढ़ने का वो नहीं लेना है, क्योंकि वहां तो उसका वेद नष्ट हो जाता है। तो सातवें के लिए भी हमको छठे वाला ही लेना पड़ेगा। पहले हमने ऊपर से एक अपेक्षा पकड़ दे दूसरी छूट जाती है। बहुत अच्छा, हमने इसमें तो नहीं पढ़ा अभी, देखेंगे बराबर। छठा छठे में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्गण जिस मार्गणा में है नपुंसक वेद है, तो वो वेद नष्ट हुए बिना उसका गुणस्थान बदली होना चाहिए। आपका प्रश्न है जिसने एक बार श्रेणी मांडी है क्या वो भी अर्धपुद्गल परावर्तन भटक सकता है, तो हाँ। ग्यारहवां गुणस्थान जिसने प्राप्त किया था, अरंत जैसी जिसके वितरागता हुई है, वो भी श्रेणी चढ़ के उतरा नीचे, तो उसके लिए भी सभी मार्ग खुले हैं। अभी उसका अर्धपुद्गल परावर्तन नक्की हो गया, उसके उससे ज्यादा नहीं हो रहेगा संसार में। हाँ, ऐसे वो रेयर है, फिर भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में ऐसे आती है बातें। मेजॉरिटी तो ऐसे मोक्ष जाने वाले ही ज्यादा हो गए, जैसे हम हेल्दी लोग ज्यादा है, परंतु कोई बीमारी होती है ना, तो मेडिकल के हमारी जो बुक्स होती है मेडिकल साइंस की, तो उसमें नॉर्मल के तो वो तो नॉर्मल का एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो तो अलग शास्त्र है, परंतु बीमारियों के जो बुक्स होते हैं अलग, तो उसमें जितनी रेयर बीमारी तो सब डॉक्टर दौड़ते उसको देखेंगे। और उसका एक भी हो जाए 10 लाख में एक भी कोई केस हो गए, तो उसका बिल्कुल पूरा का पूरा विवरण उसमें आएगा। मैं मेजॉरिटी तो नॉर्मल है ना। यानी इससे अपने को ख्याल आता है कि परिणामों की कैसी विचित्रता है। यानी हम चलो हमारे अच्छे परिणाम है, चलो बिंदास हो गए, ऐसे नहीं चलेगा। यानी हम सचेत हो जाते हैं ना, अरे जीव कहाँ कहाँ पहुंचे हुए, कहाँ भटक रहे, कैसे कैसे क्या क्या अवस्थाएं होती है।
हमें तो इस तरह से लेना चाहिए कि हम सोचते हैं कि अभी तो मेरे परिणाम अच्छे हैं, अभी कुछ दिन जाने दो, फिर मैं आत्मा में उतरूंगा, फिर मैं आत्मा का अनुभव करूंगा। तो कहते हैं ऐसे परिणामों के सहारे मत रहना, जो काम कल कर सकता है सो आज कर ले, और जो आज कर सकता है सो अब कर ले। क्योंकि देखो ना, हमने देखा है 8वें 9वें गुणस्थान तक के जाने वाले जीव के भी दोबारा आने के लिए कितना समय लगेगा।
ये तो हम टाल देते हैं, परसों कहीं
पढ़ा
था। ये
तो सम्यक दृष्टि है, फिर भी उसको अर्धपुद्गल परावर्तन, और जो मिथ्या दृष्टि है उसका क्या लिमिट है? हाँ, अनंत काल जाएगा,
अनंत पुद्गल परावर्तन हो चुके पहले। उस दिन कहीं पढ़ा था कि क्रोध मान माया लोभ के परिणाम अपने तो होते रहते हैं, है ना। अपने को ख्याल आता है बहुत क्रोध आ रहा है, कभी ऐसा जीव कहता है मैं क्रोध कल करूंगा, आज नहीं, अभी आज टाइम नहीं है मेरे को, मैं कल क्रोध करूंगा, परंतु ये स्वाध्याय है। इन्हें वो वेग उसके वेग में बह जाता है और वही करना चाहता है, परंतु ये इस बात को हमेशा गौणी रखता है। ये तो क्या अपनी बात है ना, कभी भी हो सकती है। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरण का भी अंतर कहना चाहिए। अनिवृत्तिकरण में भी वो अंतर, जघन्य भी अंतर कैसे ऊपर जाके आया है, अभी उस वो वेद में, वेद वाला भाग है उसका, फिर उसमें 8वें में आया, 7वें में आया, फिर वो श्रेणी चढ़ा, तब उसका जघन्य अंतर होगा। एक बार चढ़ के आया है, दूसरी बार हाँ 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 एक भव में मैक्सिमम दो होते हैं और टोटल चार और बीच में अंतर अर्ध पुद्गल हो सकता है। तो दसवें गुणस्थान का अंतर कितना पड़ेगा? हाँ वेरी गुड। ये अपगत वेदी हो ना, उसकी मार्गणा अलग हो जाएगी। ये पढ़ने से हम ही चौंकना होते हैं ना, अरे अपना कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, भले हो जाए परंतु फिर अपने देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे। दोन्नम खवानम अंतरम केवचिरम कालादहोदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। अब दो क्षपक लिए, कौन से दो क्षपक? अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, क्योंकि अपना नपुसक वेद का प्रकरण चल रहा है। नपुसक वेदी अपूर्वकरण संयत और अनिवृत्तिकरण संयत, इन दोनों क्षपकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। नाना जीव आते रहे उस गुणस्थान में, पर कभी ऐसा होता है कोई जीव उस गुणस्थान में नहीं है, तो एक समय तक हो सकता है जघन्य से। यह सूत्र सुगम है। और उक्कस्येन वास पुदत्तम, उक्त दोनों नपुसक वेदी क्षपकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है। सामान्य क्षपक का अंतर हमने 6 महीना देखा था, पर यहाँ नपुसक वेदी क्षपक है, नपुसक वेद के साथ जो श्रेणी चल रहा है क्षपक श्रेणी, उसकी बात चल रही है, तो उसमें वर्ष पृथक्त्व का अंतर पड़ सकता है। आगे उसका कारण दिया, सामान्य वेदी ने सभी तीनों अगर मिलकर देखते हम तो 6 महीना उसका काल है। क्षपक श्रेणी का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा क्षपक श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर, अधिक से अधिक लंबा काल तक कोई क्षपक श्रेणी में नहीं आया जीव, तो 6 महीने तक हो सकता है। पुरुष वेद में भी देख, हाँ सामान्य में और रोग में कोई फर्क, देखो पुरुष वेद का 1 साल क्यों बताया? क्योंकि पुरुष वेदी कोई क्षपक श्रेणी में आ गए और फिर बाद में हो सकता है कि स्त्री वेदी आए लगातार कुछ काल तक, फिर नपुसक वेदी आए, तो उसका 1 वर्ष ऐसा अंतर पड़ सकता है। कल हमने पढ़ा था उसको। देखो ये नपुसक वेदी वाले की कारण भी बताया, क्योंकि यह अप्रशस्त वेद है और अप्रशस्त वेद से क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव बहुत नहीं होते, नहीं होते ऐसा नहीं कह, बहुत नहीं होते। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर कहेंगे। एक जीवम पड़ुच्चन अत्यंतरम निरंतरम, उपशम में तो हमने अंतर देखा था, परंतु एक क्षपक श्रेणी है, लौटकर उसी गुणस्थान में आने का कोई सवाल ही नहीं है। उक्त दोनों नपुसक वेदी क्षपकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। अब अपगत वेदियों की बात करेंगे। अवगत वेदेषु अनियट्ठी उवसम सुहुम उवसमान अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। अपगत वेदियों में अनिवृत्तिकरण उपशामक, अनिवृत्तिकरण वहां भी लिया था और यहां भी लिया, नपुसक वेदियों में भी लिया और अपगत वेदियों में भी लिया, ऐसा क्यों प्रेरणा भी? मेरा ऐसा प्रश्न है, अनिवृत्तिकरण जो है गुणस्थान नपुसक वेदी जीवों में भी लिया और यहाँ अपगत वेदी में भी ले रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ हाँ बहुत आसान है। हाँ पहला समय नहीं, पहला भाग देखो, पहले भाग तक सवेद भाग जो है एक भाग नवे गुणस्थान का, उसके 5 भाग कह रही है, तो एक भाग था तो वेद भी है और कषाय भी है सभी, फिर क्रम से एक एक कषाय भी कम हो जाता है, यानी पहले वेद का उदय मिट जाता है, फिर क्रोध का उदय मिट जाता है, आदि आदि बातें। तो पहले भाग में वो सवेद है, तो नपुसक वेदी अनिवृत्तिकरण वहाँ हमने देखा था। अब अपगत वेदियों में जो अनिवृत्तिकरण लिया पहले भाग के बाद, यानी दूसरा तीसरा चौथा 5वां भाग और फिर सूक्ष्म सांप्रय, ये अपगत वेदी में लिया। तो अपगत वेदियों में अनिवृत्तिकरण उपशामक और सूक्ष्म सांप्राय उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, यानी एक समय ऐसा बीच में गैप हो सकता है। तो अभी मुझे बताना, एक जीव की अपेक्षा हम पढ़ेंगे नहीं, पहले सोचेंगे। तो एक जीव की अपेक्षा अंतर कैसा होगा नौवे गुण स्थान का? हाँ, एक जीव का, एक जीव की अपगत वेदी का। हाँ, तो अपगत वेद है तो वो चढ़ के उतरने तक ही जघन्य काल लेना, और उत्कृष्ट काल जघन्य काल एक जीव की अपेक्षा, क्योंकि अपगत वेदी है वो सवेद भाग में नहीं आना चाहिए। यानी नौवा नौवा शुरू हो ना उसका अपगत वेद, नौवे में आते ही उसका अंतर समाप्त हुआ, उसका पहले भाग में एंटर अपगत वेदी है ना, अपगत वेदी नौवा। जब तक नौवे में है तब तक उसका काल है, नौवा छूटा तो अंतर चालू हो गया। अंतर कितना है? दसवा, ग्यारहवा और दसवा। नौवे में एंटर होते ही अंतर समाप्त हुआ। हाँ, वही से आया, पीछे भाग से आया, परंतु नौवा प्राप्त होते ही अंतर समाप्त हुआ ना। उसको पहले भाग तक आने की जरूरत क्या है? वो सभी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सभी भाग अपगत वेदी ही है, यानी वो लास्ट भाग उसका एंटर ही है ना उसका। तो वहां आते ही वो अपगत वेदी नौवा गुणस्थानी हो गया। ये जघन्य अंतर, उत्कृष्ट अंतर। हाँ हाँ, मरेगा तो कैसा? पहले समय मरे या जिंदा रहे वो तो अंतर कहाँ रहा? वो नौवे में आ गए ना, अंतर कहाँ बढ़ गया? अंतर बढ़ नहीं गया। हाँ, तो उसमें यथा योग्य किसी का जघन्य उत्कृष्ट काल होगा। तो जो है जघन्य वही होगा उत्कृष्ट, ख्याल है ना। हम अब पढ़ेंगे, उन्होंने बोला कि पहले समय में मरेगा। देखो ये नौवा है, ये वेद वाला भाग है, अपगत वेद वाला है नौवा, फिर दसवा, ग्यारहवा, ये ग्यारहवा, फिर दसवा और नौवा, और नीचे उसका वेद वाला भाग है। अब हमको अपगत वेदी का अंतर चाल देखना है, तो यहाँ से अंतर शुरू हुआ। यहाँ तो उसका काल है नौवे का, तो दसवा, ग्यारहवा, दसवा, यहाँ आते ही अंतर समाप्त हुआ। वो मरे कि नहीं मरे उसकी बात ही नहीं है। मरण की अपेक्षा एक समय लिया, और कौन सी अपेक्षा लगाओगे? नौवे जब प्राप्त नहीं होता है, नौवे को प्राप्त नहीं होता है तब तक अंतर काउंट ही नहीं होता है, और पहले समय में ही अंतर समाप्त हुआ। कैसे घटित होगा? आप अपगत वेदी की बात कर रहे हैं, यानी दसवा वहाँ से आते ही उसका अंतर समाप्त हुआ। अंतर कहाँ हुआ फिर? आप तो काल एक समय बता रहे हैं, हमको अंतर देखना है, गैप चाहिए। हाँ, ये वेद, ये सवेद वाला है, ये पीला है वो अपगत वेदी, अपगत वेदी नौवा गुणस्थान, ये दसवा है ग्यारहवा। यानी यहाँ आते ही उसका अंतर समाप्त हुआ, वो मरे जिंदा रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जगन्नाथ और उत्कृष्ट उतना ही होगा। देखो यार अभी हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा तो नहीं है, थोड़ी आपस में चर्चा करेंगे ना। तो नाना जी उनकी अपेक्षा जगन्य से एक समय अंतर है, यह सूत्र सुगम है। अब 215 नंबर का पढ़ेंगे। उक्त से न वास पुदत्तम, उक्त दोनों अपगत वेदी उपशामकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है। ये तो आसान है, पहले हमने देखा भी था, क्योंकि ये दोनों उपशामक गुणस्थान है और ओघ में उपशामकों का इतना ही उत्कृष्ट अंतर बतलाया गया है। ये तो नाना जीवों की अपेक्षा बात हुई। अब एक जीव की अपेक्षा करेंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतो मुहूर्तम, उक्त दोनों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है। दोनों उपशामक यानी कौन से? दो उपशामक, नवमा अपगत वेदी वाले लेना है, तो दसवें का अंतर कितना होगा? हाँ बस एक ग्यारहवा गुणस्थान ही दसवें के लिए अंतर होगा। और ग्यारहवें के लिए अंतर कितना होगा? हाँ तब आएगा, तो बीच में वसावेदी हो जाएगा, तो अंतर ही नहीं होगा। अपगत वेदी है वो सवेदी हो जाएगा, तो उसमें तो अंतर होगा ही नहीं। हाँ देखो, इसलिए थोड़ा रुक रुक के जाएंगे ना, क्योंकि वहां तो पढ़ेंगे तो ख्याल में आता है, पढ़े बिना अपने कहां मिस्टेक होती है, तो हम थोड़ी ज्यादा और सावधानी रखते हैं। एक जीवन पड़ुच्च पढ़े ना, उक्त दोनों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर मूर्त है, क्योंकि ऊपर चढ़कर नीचे उतरने वाले जीव के अंतर मूर्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। यानी नौवा अपगत वेदी है वो दस नौवे का रिमेनिंग काल, वो समाप्त होते ही उसका अंतर चालू हो गया, दसवा ग्यारहवा फिर दसवा, और नौवे का पहले समय में ही अंतर समाप्त हुआ। अब उत्कृष्ट अंतर कहेंगे। उक्कसेन अंतोमोत्तम, उक्त दोनों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। यानी जघन्य भी अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। यह सूत्र भी सुगम है, उसमें तो उन्होंने समझाया नहीं, क्योंकि जो काल जघन्य का है वही वो उत्कृष्ट का भी। अब ग्यारहवें की बात करेंगे। वसंत कसाय वीदराग छदुमत्थानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्य न एक समय। यानी यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा तो अंतर पड़ सकता है, एक जीव की अपेक्षा नहीं पड़ेगा, लगातार उसमें आते रहे ऐसे जीव लेना वहां। तो उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। यह सूत्र भी सुगम है। अब उपकसेन वासपुदत्तम, उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, वो भी हमने देखा था पहले। क्योंकि एक बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर तथा उतर नीचे गिरकर उत्कर्ष से उपशम श्रेणी का वर्ष पृथक्त्व प्रमाण अंतर पाया जाता है। हाँ, वर्ष पृथक्त्व में तीन से नौ, यानी कुछ वर्ष ऐसा भी कह सकते हैं हम, एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहे। अब कहते एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, जो अभी हमने देखा था, क्योंकि अपगत वेदी है, मार्गणा नष्ट हुए बिना क्या वो गुणस्थान चेंज करके वापस लौट सकता है, ये देखना है। तो ग्यारहवा छूटा, अंतर चालू हो गया, परंतु दसवा नौवा नवे में आते फिर पहले भाग में सवेद हो गया, तो उसका अंतर नहीं हो सकता, वापस वहां आएगा पहुंचेगा। अपगत वेद अवस्था में ही यदि वापस आता तो अंतर सिद्ध हो जाता। तो यहाँ क्या कहते, एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम, उपशांत कषाय का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि उपशांत कषाय वीतराग के ऊपर चढ़ने का अभाव है, यानी ग्यारहवें के ऊपर और कोई गुणस्थान नहीं है, तथा नीचे गिरने पर भी अपगत वेद रूप से ही उपशांत कषाय गुणस्थान को प्राप्त होना संभव नहीं है। आसान है ना अभी ये तो बात। अब अपगत वेदियों में और आगे बातें करेंगे, क्षपक श्रेणी की बात करेंगे। अनियट्ठिक हवा, सुहुमक हवा, क्षीण कषाय वीतराग छदुमत्था, अजोगी केवली ओगम। अपगत वेदियों में अनिवृत्तिकरण क्षपक, सूक्ष्म सांप्राय क्षपक, क्षीण कषाय वीतराग छदमस्थ और अयोगी केवली जीवों का अंतर ओग के समान है। कितना है अंतर नाना जीवों की अपेक्षा? और उत्कृष्ट 6 महीने। अपगत वेदी है, पूर्व में नपुसक वेद का क्षय यानी हो चुका है क्षय, या पुरुष वेद का, उसकी बात नहीं है, सब तीनों ही आ जाते ना, जो पहले पुरुष वेदी थे या नपुसक वेदी थे या स्त्री वेदी थे। अपगत वेदी होने पर अभी सबको एक साथ गिनेंगे, तो क्षपक श्रेणी का उत्कृष्ट अंतर तो 6 महीने का होगा। देखो, क्योंकि अपगत वेदत्व के प्रति ओग प्ररूपणा और वेद मार्गणा की प्ररूपणा, इन दोनों में कोई अर्थ की विशेषता ही नहीं है। अपगत वेद हो जाने पर ओग की बात कहो या वेद मार्गणा की बात करो, एक ही बात है, क्योंकि सभी अपगत वेदी ही जीव है वहाँ, उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। ख्याल आते? सजोगी केवली ओगम, सयोगी केवली का अंतर ओग के समान है, यह सूत्र सुगम है। सयोगी केवली भी यहाँ अपगत वेदियों में लिया है, तो उसका भी अंतर मालूम है हमें, निरंतर है। यानी नाना जीव भी हमेशा ही रहेगी और एक जीव भी वापस लौट नहीं सकता, यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार वेद मार्गणा समाप्त हुए। अब कषाय मार्गणा की बात चालू करते हैं। कषायाणु वादेन कोद कसाई माण कसाई, कुछ प्रश्न है? कसायाणु वादेन कोद कसाई माण कसाई माय कसाई लोह कसाईसु मिच्छा दिठ्ठि पहुड़ी जाव सुम सांप्रायी समा खवा ती मनोजोगी भंगो। मनोयोग का जो भंग देखा था वैसे इसमें समझना, ऐसा कहते हैं, पढ़ते नीचे उसका अर्थ। कषाय मार्गणा के अनुवाद से क्रोध कषाई मान कषाई माया कषाई और लोभ कषाईयों में मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्राय उपशामक और क्षपक तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवों का अंतर मनोयोगियों के समान है। क्या कहते हैं? सूक्ष्म सांप्राय को अलग लिया, क्योंकि वहां तो अकेला एक लोभ कषाय वाला है, सूक्ष्म लोभ वाला। शंका, मिथ्या दृष्टि असंयत समय दृष्टि संयता संयत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयतों का अंतर भले ही मनोयोगियों के समान रहा आवे, क्योंकि नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से समानता पाई जाती है। क्या कहते हैं? पहला गुणस्थान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, ये तो निरंतर गुणस्थान है, नाना जीवों की अपेक्षा कोई अंतर है ही नहीं, तो ये तो समानता भले हो जावे, ओग के ओग से इसकी समानता है। सांसाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का भी अंतर मनोयोगियों के समान रहा आवे, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्लवपम के असंख्यातवे भाग की अपेक्षा, यानी वो तो शंकाकार वो ये दोहरा रहा है कि जिससे जिससे सहमत है वो फिर दोहरा के बता रहे, यानी पहला दूसरा पहला चौथा पांचवा छठा सातवा ये तो निरंतर गुणस्थान है, दूसरे और तीसरे में अंतर नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्ले का असंख्या दबाव, वो भी ठीक है कहते हैं, और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से अंतर का अभाव है ने, हाँ दोनों की समान होने से, एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से समानता पाई जाती है। तीनों उपशामकों का भी अंतर मनोयोगियों के समान रहा आवे, क्योंकि नाना जीवों के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर क्रमशः एक समय और वर्ष पृथक्त्व काल से तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से समानता पाई जाती है। किंतु तीनों क्षपकों का अंतर, ये जो मनोयोगियों के साथ कंपेयर की थी, मनोयोगियों के समान है ऐसा कह दिया था, तभी इसका प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। तीनों क्षपकों का अंतर मनोयोगियों के समान घटित नहीं होता है, क्योंकि मनोयोगियों के समान कषायों का अंतर छह मास नहीं पाया जाता है। देखो मनोयोगियों का अंतर हमने पहले देखा था, 89 पृष्ठ निकालना। सूत्र है ना उक्त योग वाले, उक्त योग ने पांच मनोयोगी व पांच वचन योगी वगैरह वगैरह की बात चल रही थी अपनी, मिला 89 पेज 159 सूत्र। उक्त योग वाले चारों क्षपकों का अंतर ओग के समान है, ओग जैसा ही अंतर है ऐसा वहां कह दिया। तो क्षपकों में एक जीव की अपेक्षा तो अंतर ही नहीं होता है, और नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह में, बराबर। तो नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से छह मास अंतर है, तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, इस प्रकार ओग से अंतर में कोई भेद नहीं। ये तो वहां बात की थी योग के साथ, अब यहाँ कषाय की बात चल रही है। तो शंकाकार की शंका ऐसी है, अपने मूल पे जाना 112 पृष्ठ। कि मनोयोगियों के समान यहाँ घटित नहीं होता है, क्योंकि कषाय के लिए छह महीने का अंतर नहीं पड़ता, ऐसा उसका कहना है। विशिष्ट कषाय के साथ श्रेणी चढ़ने वाले जीव लेना है तो उसमें ऐसा अंतर घटित नहीं होता है, ये इसका कहना है। नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, देखो। किंतु देखो तीनों क्षपकों का अंतर मनोयोगियों के समान घटित नहीं होता, क्योंकि मनोयोगियों के समान कषायों का अंतर छह मास नहीं पाया जाता है। तो प्रतिशंका, यह कैसे जाना जाता है, उसका प्रति समाधान, ये कौन कर रहा है समाधान? शंका का, हाँ ये जो प्रतिशंका है वो आचार्य कह रहे, शिष्य को पूछा तो प्रति समाधान ने शंकाकार अभी समाधान कर रहे कि विवक्ष, हाँ हाँ यह कैसे जाना, ये शंकाकार उसका उत्तर दे रहे। विवक्षित कषाय से व्यतिरिक्त यानी उसके अलावा, हम जिस कषाय की बात मान लेते हैं, हम क्रोध कषाय की बात करें तो कषाय क्रोध को छोड़कर अन्य कषाय, उसके व्यतिरिक्त यानी उसके अलावा अन्य शेष तीन कषायों के द्वारा एक दो और तीन संयोग के क्रम से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों का बहुत अंतर पाया जाता है। क्या कहते हैं, क्रोध के साथ श्रेणी चढ़ने वाला कोई एक जीव है, और कोई अन्य जीव कैसा है, एक दो और तीन संयोग का क्रम यानी कोई अकेले लोभ के साथ ही श्रेणी चढ़ना है, यानी उसके जो पांच भाग हमने किए उस सर्वत्र लोभ का ही उदय है, ऐसा भी हो सकता है। कोई जीव स्टार्टिंग में मान है फिर लोभ, मान और लोभ के साथ चढ़ेगा, और कोई मान माया और लोभ के साथ चढ़ेगा, यानी उसका उदय काल जो हर एक का अलग अलग है, पहले क्रोध का उदय काल होता है, फिर मान का उदय काल, फिर माया का उदय काल और लोभ का उदय काल। पहले के बाद क्रोध का उदय नहीं हो सकता है, परंतु क्रोध का उदय नहीं हो सकता है परंतु मान माया लोभ में से किसी का भी उदय हो सकता है। तो ऐसा कोई जीव है कि क्रोध उदय काल में भी लोभ का ही उदय हो, यानी चारों जो उदय काल बताए आगे सर्वत्र लोभ का ही उदय हो, ऐसा जीव हो सकता है। हाँ फिर मैं दोबारा बता दूं, नौवे गुणस्थान की ये बात है। नौवे गुणस्थान के स्टार्टिंग में तो वेद का उदय होता है, ये पहला भाग। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब श्रेणी चल रहा है कोई जी, तो यहाँ तो वेद का उदय यहाँ समाप्त हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्रोध उदय काल कहने में आता है, परंतु वहाँ उदय होगा क्रोधमान मायालोभ किसी में से, और बंद भी होगा क्रोधमान मायालोभ चारों का ही, संज्वलन टाइप के। दूसरे भाग में इसको मान उदय काल कहते हैं। क्रोध का उदय वाला जीव मान में परिवर्तित हो जाएगा, उसका मान का उदय चालू हो गया। परंतु कोई ऐसा जीव हो सकता है स्टार्टिंग से ही उसका मान का ही उदय चल रहा है। तो पहले भाग में तो चारों कषाय बनते थे, परंतु दूसरे भाग में भी क्रोध नहीं बंधेगा, मान माया और लोभ बंधेगी। परंतु उदय यहां मान माया लोभ किसी में से हो सकता है। तीसरे भाग में माया वाला, माया और लोभ बंधेगा, और अगर क्रोध के साथ चढ़ने वाला है ना, तो फिर क्रोध का मान होता है, मान का माया होता है, माया का लोभ होता है। क्रोध सही चढ़ने वाला हो तो, जो मान सही चढ़ने वाला है, पहले दो भागों में मान सहित होता है, बाद में माया और लोभ होता है। और जो लोभ सहित ही श्रेणी चढ़ता है, पहले दूसरे सभी भागों में वो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, क्योंकि हमने कषाय वाला अलग निकाला ना, नीचे एक नंबर वेद वाले को दिया था, तो सर्वत्र उसका लोभ का ही उदय हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ क्या कहा, एक कषाय या दो कषाय या तीन कषाय के साथ चढ़ने वाला, विवक्षित को छोड़कर अन्य। लोभ का ही उदय हो, देखो बंद की अपेक्षा ऐसा है। अभी हमने चार ही भाग करते हैं, तो पहले भाग को क्रोध उदय काल कहते हैं, भले उदय किसी का हो, परंतु यहाँ बंद तो क्रोध मान माया लोभ चारों का होगा। अब यहाँ क्रोध का उदय ऊपर कहीं हो ही नहीं सकता, तो वहां मान उदय काल कहलाएगा, परंतु मान माया और लोभ तीनों ही बंद रहे। मान लेते यहाँ वो लोभ का ही उदय है स्टार्टिंग से, लोभ का उदय वाला ही लेते हम, तो लोभ का उदय वाले को स्टार्टिंग में पहले भाग में तो क्रोध मान माया लोभ चारों का बंद होगा। वही जीव अभी लोभ का ही उदय चल रहा है उसका थ्रू आउट, तो यहाँ मान माया लोभ का बंद हो रहा है। यहाँ पर माया उदय काल में आते ही माया और लोभ का ही बंद हो रहा है, और अंत में लोभ का ही बंद होता है। नवे गुणस्थान के अंत तक, दसवें में तो हमें मालूम है सूक्ष्म लोभ का उदय है, परंतु लोभ का वहां बंद नहीं है। ये अंतर्मूर्त है, ये तो नवे गुणस्थान में किस विधि से उसकी क्षपणा या उपशम होता है उसकी बात है। ये नवे गुणस्थान के लिए ये खाली रूल है, अन्यत्र नहीं। यहाँ बात उपशामक की हो रही है ना, देखो ये प्रश्न उपशामकों के लिए उसने पूछा था, क्षपक के लिए, क्षपक के लिए, हाँ क्षपक के लिए पूछा था। एक एक का उसका उदय समाप्त तो होता है, तो उसका क्षय भी कहलाएगा। वो तो जो रिमेनिंग उसमें प्रकृति, वो अन्य रूप से परिणमित होती रहती है, क्रोध के मान रूप, मान के माया रूप, ऐसे ऐसे। तो यहाँ कहना है ये घटित नहीं होता है, ये उसके अंतर बहुत पाया जाता है। देखो प्रति समाधान फिर पढ़ते, विवक्षित कषाय से व्यतिरिक्त तीन कषायों के द्वारा एक दो और तीन संयोग के क्रम से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों का बहुत अंतर पाया जाता है, उसका समाधान। अभी ये समाधान आचार्य कर रहे हैं, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ओघ के साथ विवक्षित मनोयोगियों के समान कथन अन्यता बन नहीं सकता है, तथा चारों कषायों का उत्कृष्ट अंतर छह मास मात्र ही सिद्ध होता है। चारों कशाओं का मिलकर उत्कृष्ट अंतर, हमने क्षपक श्रेणी का जो उत्कृष्ट अंतर है वही चारों कशाओं का भी उत्कृष्ट अंतर कहेंगे। हाँ सब ने एक साथ नहीं हो गए, अन्य अन्य जीव लोग के
साथ चढ़ने वाले सब जीव एक साथ में नहीं।
हाँ बहुत सारे जीव है ना यहाँ पर, एक जीव की अपेक्षा तो अंतर बन ही नहीं सकता है, और नाना जीवों की अपेक्षा तो अन्य अन्य कषाय के साथ चढ़ रहे हैं। यानी अन्य अन्य कषायों के साथ चढ़ेंगे तो भी वो उत्कृष्ट अंतर 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा कहना है। ऐसा मानने पर पाहुड़ सूत्र के साथ व्यभिचार भी नहीं आता है, क्योंकि उसका उपदेश भिन्न है। व्यभिचार है ने, व्यभिचार दोष नहीं आता है ने, उसमें कोई विरोध नहीं आता। अब अकषायों में बात करें, कषायों की बात इतनी कर, क्योंकि जो गुणस्थान हो वहां तो वे कषाय तो सभी रहते ही हैं। अकसायसु वसंत कसाय वीदराग छदुमत्थान अंतरम के वचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्ने न एक समय। अकसायियों में कसाइयों कितने कहाँ तक लिए, 9वें तक तो चारों कसाय वाले, और ऊपर एक सूक्ष्म सांप्राय अलग से बताया था क्योंकि वहां लोभ है, और अकसायियों में अभी 11वें की बात पहले ले रहे। अकसायियों में उपशांत कसाय वीतराग छदमस्थों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, पहले भी हमने देखा था उसको। यह सूत्र सुगम है। उपकस्यन वासपुदत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है नाना जीवों की अपेक्षा से, बीच में गैप पड़ गया तो कितने काल के बाद फिर कोई जीव 11वें में आएंगे, तो वर्ष पृथक्त्व, क्योंकि यह गुणस्थान उपशम श्रेणी का विषयभूत है। पहले हमने देखा था उपशम श्रेणी वालों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक होता है, और उपशामकों का उत्कृष्ट अंतर इतना ही बतलाया गया है। तो एक जीव की अपेक्षा अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अकषाय है ना, 11वें वाले को दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ाकर 11वें में लाना है तो बीच में कषाय होना पड़ेगा, तो अकषायपना चालू रहे और दोबारा लौट कर आवे ऐसा नहीं हो सकता, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। अकाशाई हुआ है, अकषाई करना उसको। वो नीचे का सूत्र का मैंने करेक्शन, ऊपर पढ़ना रह गया ना, 226 में भी पढ़ रही हूँ। उपशांत कषाय वीतराग छदमस्थ का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि नीचे उतरकर यहां भी अकाशाय अकषायता का ऊपर क्या लिखा, ऊपर लिखा ही नहीं, अकषायता विनाश है ना। हाँ नीचे उतरकर अकषायता का विनाश होना, अकषायता का विनाश होना यानी कषाई होना, यानी बीच में कषाई हुए बिना वापस फिर 10-11वें में नहीं आ सकते, विनाश हुए बिना पुनः उपशांत पर्याय के परिणमन का अभाव है। अब अगला सूत्र, क्षीण कसाय वीदराग छदुमत्था अजोगी केवली ओघम। अकषायी जीवों में यहां भी अकषायी करना, दो जगह का करना है। अकषायी जीवों में अकषायत्ता विनाश है ना, हाँ 227 का अर्थ पढ़ रही हूँ। अकषायी जीवों में क्षीण कषाय वीतराग छदमस्थ और अयोगी केवली जिनों का अंतर ओघ के समान है। क्षपक श्रेणी का जो अंतर है वही यहाँ बताना है, परंतु वहाँ कषाई क्षपक वाले लिए थे, अब अकषायी क्षपक लेने हैं, अंतर तो उतना ही होगा, कितना, नाना जीवों की अपेक्षा एक समय और 6 महीने, अंतर ओके समान है। अब सजोगी केवली ओघम, सयोगी केवली जीवों का अंतर ओघ के समान है। अकषाय में सयोगी भी गुणस्थान लेना है, तो जो गुणस्थान का है वही इसमें भी होगा। ये दोनों ही सूत्र सुगम है। इस प्रकार कषाय मार्गणा समाप्त हुई है, फटाफट समाप्त हो रहे। अब ज्ञान मार्गणा की बात करेंगे। नानानुवादेन मदी अन्नानी सुद अन्नानी विभंग नानी सु मिच्छादिठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। क्या कहते हैं? ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मत्य ज्ञानी यानी मति अज्ञानी और श्रुता ज्ञानी यानी श्रुत अज्ञानी, मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही ना, और विभंग ज्ञानी जीवों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा ही मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में अनेक जीव हो गए, बराबर। तो एक जीव की अपेक्षा कितना अंतर होगा? क्यों? गुणस्थान पलट कर आएगा ना उसमें वापस। हाँ भाई, एक से चार में गया तो ज्ञान कौन सा हो गया? अज्ञान से ज्ञान होगा तो मार्गणा बदल गया, मार्गणा नष्ट हुई तो नहीं चलेगा। मति और शुद्ध अज्ञान ही रहना चाहिए और मिथ्या तो गुणस्थान पलटना चाहिए। क्या हो सकता है? शासादन में जाएगा वो तो मति ज्ञानी हो जाएगा, सुमति ज्ञानी होगा। अभी यहाँ कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान है, वो तो कायम रखना चाहिए और गुणस्थान बदलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तीसरे में तो मिश्र ज्ञान है, वो भी ये मिथ्या कुमति यानी मति श्रुत अज्ञान नहीं है वे। हाँ, चौथे का मति श्रुत ज्ञान ही हमारा क्राइटेरिया रहेगा। वहाँ चौथे का अंतर वहाँ तो घटित होगा, वहाँ तो घटित होगा, चौथे वाले में घटित होगा। आप आगे की सोच रहे हैं, परंतु अच्छी बात है, परंतु मिथ्यात्व के सहित मति श्रुत अज्ञान है ना, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान, हम कुमति कुश्रुत कहेंगे, तो कुमति कुश्रुत का कायम रखना है। विभंग ज्ञान है और उसका गुणस्थान बदलेगा क्या नहीं बदलेगा? सम्यक तो होगा तो उसका सुअवधि हो जाएगा, सुअवधि हो जाएगा। हाँ, अपर्याप्त अवस्था है, मिथ्या तो गुणस्थान कहाँ नष्ट हुआ उसका? देखो हम यहाँ से पढ़ेंगे अभी। नाना जीवन की और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि इन तीनों अज्ञान वाले मिथ्या दृष्टियों का अविच्छिन्न प्रवाह होने से गुणस्थान के परिवर्तन का अभाव है। गुणस्थान परिवर्तन नहीं होता है। विभंग ज्ञानियों में भी विभंग ज्ञान छूट सकता है। आप जो कहते थे अपर्याप्त अवस्था में, हमको वो नहीं, हमको वो पकड़ के रखना है और उसमें गुणस्थान पलटी करना है। अब आगे ये बुद्धि की करामत है ना, तो हम सोचते हैं थोड़ा, दुनिया दिन भर अन्य अन्य बातों में सोचते रहते हैं। देखो, अब शासन संवाद इठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च ओघम। देखो, तीनों अज्ञान वाले शासादन सम्यक दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है। क्या देखा था ओग में? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्लोपम का असंख्यात भाग नाना जीवों के। अभी एक जीव की अपेक्षा अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दोबारा शासादन में आने के लिए एक बार उसको दोबारा शासादन में आने के लिए उसको ज्ञानी होना पड़ेगा, तो उसका वो कुमति कुश्रुत नष्ट हो जाएगा।
वहाँ एथेंस में तो 10-15 दिन के लिए कसरत करें, यहाँ तो रोजाना है भाई। हाँ, मेंटल कसरत है ये। कहीं धार पर चल रहे गिर जावे, लिपस जावे, कहीं एक हाथ छूट जावे, तो ऐसा
नहीं। यहाँ नाना जीवन की अपेक्षा तो अंतर पड़ेगा, शासाधन में अलग अलग जीव आ रहे, परंतु एक जीव को आना है तो उसका तो अंतर नहीं हो सकता। देखो तीनों अज्ञान वाले शासाधन समय दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर ओके समान है, अभी हमने पढ़ा। क्योंकि जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम के असंख्यात भाग की अपेक्षा समानता है। अब अगला सूत्र, एक जीवन पड़ुच्चन अत्यंतरम निरंतरम। तीनों अज्ञान वाले संसाधन सम्यक दृष्टियों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। क्योंकि अभी कारण बताते, प्ररूपणा किए जाने वाले ज्ञानों से भिन्न ज्ञानों को, अपनी प्ररूपणा है मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, उससे भिन्न ज्ञान यानी सुमति सुश्रुता मति श्रुत को, भिन्न ज्ञानों को प्राप्त होने पर विवक्षित मार्गणा का विनाश हो जाता है। हम मार्गणा की बात कर रहे हैं, विवक्षित मार्गणा में गुणस्थान को छोड़कर वापस गुणस्थान में आना। यदि हम पहले वाले को चौथे में ले जाते हैं तो उसकी मार्गणा ही नष्ट हो जाती है, और अपनी मार्गणा यहाँ पर अज्ञान चल रही, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान की बात चल रही। अब सुमति की बात चलेंगे। आभिनिबोधिक यानी मति ज्ञान, सुमति ज्ञान, आभिनिबोह्य सुद ओहिणाणी सु, यह अवधि ज्ञानी कहा, पहले हमने विभंग ज्ञानी कहा था, ये सु अवधि को अवधि ज्ञानी कहते। असंजत सम्मादिठिनम अंतरम केवचिरम कालादोहोदि नाना जीवम पड़ुच्च नत्यंतरम निरंतर। ये तो नाना जीव तो हमेशा ही चौथे में रहेंगे। तो आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान वालों में असंयत करो, अनसंयत हुआ है वो बिंदी स के ऊपर लेना। असंयत सम्यक दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। क्योंकि तीनों ज्ञान वाले असंयत सम्यक दृष्टियों का सर्वकाल अविच्छिन्न प्रवाह रहता है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा चौथा गुणस्थान तो हमेशा ही रहेगा, और चौथा गुणस्थान रहेगा तो वो सुमति सुश्रुत और वो सुअवधि तो रहेगा ही उसमें। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतोमोत्तम, यानी नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। क्या एक जीव की अपेक्षा अंतर पड़ सकता है? अपना क्राइटेरिया क्या है? मति श्रुत ज्ञान, और उसमें चौथा गुणस्थान है, तो कहाँ जाएगा वो? हाँ, ऊपर जाके आएगा, नीचे जा नहीं सकता। नीचे जाएगा तो उसका कुमति कुश्रुत होगा, इसलिए पांचवें में जाकर लौटेगा, चलेगा, ख्याल है ना? हाँ, तो एक जीव की अपेक्षा बताते हैं। तीनों ज्ञान वाले असंयत समय दृष्टियों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे एक असंयत समय दृष्टि जीव संयमा संयम को प्राप्त हुआ, नीचे के गुणस्थानों में नहीं डालना है क्योंकि वो मार्गणा का नाश हो जाता है, ज्ञान से अज्ञान हो जाता है, वहां पर सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रह करके फिर भी असंयत सम्यक दृष्टि हो गया, इस प्रकार अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर लब्ध हुआ, पांचवे में जाकर लौटा। अब उत्कृष्ट बात करेंगे, किसकी बात? चौथे में से गया परंतु उसका मतिशुत अवधि चालू रखना चाहिए, तो चौथे में से अन्य गुणस्थान में गया और वापस आया, विचार करो। हाँ, अवधि को भी लेना। तो उक्कसेना पूर्व कोटि देशुणम, पूर्व कोटि से बाद यानी उसका अंतर चालू, चौथे का अंतर यानी पांचवे में रहने का काल, उत्कृष्ट काल, ख्याल है ना? चौथे का अंतर यानी पांचवे में रहने का उत्कृष्ट काल, पांचवे का अंतर नहीं बता रहे, चौथे का अंतर बता रहे, चौथे गुणस्थान का, यानी वो पांचवे में गया है। तो कितने काल अधिक से अधिक पांचवे में रह सकता है? पूर्व कोटि में तो कुछ कम करेंगे उसमें, और वापस चौथे में आना चाहिए, तो क्या कहते? देखो, उक्कस है ना पूर्व कोटि देशुणम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। अब उसको समझाएंगे। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई जीव, पूर्व कोटि की आयु स्थिति वाले संगी समूर्छिन पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। अंतर बढ़ाना है ना, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ और अंतर्मूर्त से विशुद्ध हो, संयमासंयम को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, उसका अंतर चालू हो गया। अब यहाँ समूर्छिन क्यों लिया? हाँ, क्योंकि अगर गर्भज लेते, मनुष्य में तो 8 वर्ष है और गर्भज तिरंज में 2 मास और वो कुछ हमने देखे थे ना, हाँ, 3 पक्ष और 3 दिन और अंतर्मूर्त, हाँ, तो फिर संयमासंयम को प्राप्त हुआ। उसके आगे पूर्व कोटि तक उसमें ही रहेगा, पूर्व कोटि काल प्रमाण संयमासंयम को परिपालन कर मरा और देव हुआ। संयमासंयम ही मरा, हाँ, चौथा गुणस्थान हुआ देव में पहले ही समय से, गिरह गति के पहले समय में ही चौथा गुणस्थान आ गया। इस प्रकार 4 अंतर्मूर्तों से कम पूर्व कोटि प्रमाण मति श्रुत ज्ञानी असंयत समय दृष्टि का अंतर लब्ध हुआ। ख्याल आता है? भोग भूमि वाला जीव नहीं ले सकते, वहां तो 5वां गुणस्थान है ही नहीं है, और वहां के 4थे वाले में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो तिर्यंच जो है वो तो क्षायिक होगा, तो उसमें 5वां गुणस्थान प्राप्त करने का सवाल नहीं है, और नीचे भी गिरने का कोई सवाल ही नहीं, और अपने तो ज्ञान मार्ग ना चल रहे। अब अवधि ज्ञानी की बात अलग बता रहे। अवधि ज्ञानी असंयत समय दृष्टि का अंतर कहते हैं। अवधि ज्ञानी असंयत समय दृष्टि, अवधि ज्ञान तो उसका कायम रहना चाहिए। हाँ, ऊपर 2 कोलियां। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक जीव संगी समूर्छिम पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, पश्चात अंतर्मूर्त से अवधि ज्ञानी हो गया। ये बाद में अवधि ज्ञानी हुआ इसलिए 1 अंतर्मूर्त उसके लिए बढ़ा। अंतर्मूर्त अवधि ज्ञान के साथ रहकर संयमा से हमको प्राप्त हुआ, वो अविध हुआ है अवधि करना उसको, और संयमा संयम के भी स के ऊपर अगले स के ऊपर बिंदी देना, संयमा संयम, संयम हुआ है संयम करना। फिर पढ़ती हूँ, अंतर्मूर्त अवधि ज्ञान के साथ रहकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ, यानी उसका अवधि ज्ञान का अंतर वो अवधि ज्ञानी और चौथा गुणस्थान वो शुरू हुआ। पूर्व कोटि प्रमाण संयमासंयम को परिपालन कर मरा और देह हो गया, यानी अवधि ज्ञान उसका चालू है। पहले अवधि के 4थे में आया और अवधि ज्ञान प्राप्त किया, यानी अवधि ज्ञानी 4था गुणस्थानी हुआ। वहां से 5वें में गया तो अवधि ज्ञान चालू है, 4थे का 5वें में गया तो 4थे का अंतर चालू हो गया। तो संयमासंयम के साथ ही मरा और देह हो गया, तो उसका अवधि ज्ञान चालू हो गया कि नष्ट हो गया? चालू है, सुअवधि है ना। विभंग ज्ञान में तो खंड पड़ता है अपर्याप्त अवस्था में, ये तो इसका अवधि ज्ञान चालू है और वो 4थे में आ गया तो उसका अंतर समाप्त हुआ। तो पहले जो हमने 4 अंतर्मूर्त घटाए थे उसको कम करने पड़े, 5 अंतर्मूर्त, क्योंकि अवधि ज्ञान के साथ 1 अंतर्मूर्त रहकर बाद में वो 5वें में गया था। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्तों से कम, 5वां आंकड़ा यहाँ नहीं लिखा था, अंतर्मूर्त अवधि ज्ञान के साथ रहकर जो है ना वहां पर 5वां आंकड़ा था। उसके पहले अंतर्मूर्त जहां हमने करेक्शन किया था ना, अंतर्मूर्त अवधि ज्ञान के साथ रहकर ये अंतर्मूर्त गिनना रह गया था वहां 5वां। इस तरह से 5 अंतर्मूर्तों से कम पूर्व कोटि काल प्रमाण अंतर लब्ध हुआ। अकेला असंयत था मति श्रुत ज्ञानी तो 4 अंतर्मूर्त गिने थे, अवधि ज्ञानी होने में और रुकने में वहां 5वां अंतर्मूर्त लिया। अब यही तीन न्याने वाले अभी संजदा संयद लेंगे, संजदा संजदानम अंतरम, पांचवे वाले का अंतर हम गिनेंगे तो नाना जीवों की अपेक्षा कितना अंतर होगा, निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जब पांचवे वाले मति शुद्ध और अवधि ज्ञान अपना क्राइटेरिया है तो पांचवे से उसको कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, हाँ चौथे में ले जा सकते हैं और ऊपर भी जाके आ सकता है। हाँ देखो, संजदा संजदानम केवचिरम कालाद अंतरम केवचिरम कालादहोदी नाना जीवन पड़ुच्च नथ्यंतरम निरंतरम। मति ज्ञानादि तीनों ज्ञान वाले संयता संयतों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, यह सूत्र सुगम है, हमेशा ही पांचवा गुणस्थान रहेगा। अब जघन्य और उत्कृष्ट एक जीव की अपेक्षा कहेंगे, एक जीवम पड़ुच्च जघन्येन अंतो मुहूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है, यह सूत्र भी सुगम है क्योंकि ओग प्ररूपणा से इसका कोई भेद नहीं है। अन्य गुणस्थान को अन्य ने चौथे में गया और वापस लौटा तो उसका अंतर्मूर्त सिद्ध हुआ। अब उत्कृष्ट अंतर कैसा होगा, पांचवे का उत्कृष्ट अंतर यानी पांचवे से चौथे में आया है, हाँ हाँ, उसका अपना सुमति और सुश्रुत चलते रहना चाहिए, गति बदल गए कोई बात नहीं उसकी, ख्याल है ना, उसकी अपेक्षा लेंगे। देखो क्या कहते, उक्कसे न छावट्टी सागरो वमाणी साधिरेयाणी, छावट्टी ने 66। देखो तीनों ज्ञान वाले संयता संयतों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागरोपम है। हमने चौथे गुणस्थान का अधिक से अधिक काल कितना देखा था, चौथे में हमने 66 सागर या मिथ्यात्व का अंतर दो बार 66 सागर, परंतु उसमें तो तीसरे में गया था, यहाँ वो नहीं चलेगा, उसका ज्ञान नष्ट नहीं होना चाहिए। तो 66 सागर यहाँ कैसे होता है वो सिद्ध करेंगे। जैसे मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष का होकर संयमा संयम और वेदक सम्यक्तों को एक साथ प्राप्त हुआ, पुनः अंतर्मूर्त से संयम को प्राप्त करके अंतर को प्राप्त हो, ये संजदा संजदा की बात है ना, ये संयम को प्राप्त करके अंतर को प्राप्त हो, एक हाँ संयम को प्राप्त हो, अच्छा यानी वो पांचवे से अभी वो ऊपर गया सातवें में गया तो छठा सातवां चलता रहेगा उसका, अंतर को प्राप्त हो संयम के साथ पूर्व कोटि प्रमाण काल बिताकर। देखो अभी ये संयम ही मरेगा तो उत्कृष्ट वो आयु वाला देव होगा, नरक में, हाँ नरक में तो जाएगा नहीं, पांचवे वाला पांचवे का अंतर है वो नरक में भी जाएगा तो कौन सा जीव जाता है, बाद में कोई करेगा तो ऐसा, मगर वो तो वो उसकी आयु भी ज्यादा घटित नहीं हो, यानी वो पांचवे में जाना चाहिए फिर मिथ्यात्व में जाके फिर आयु बांधनी चाहिए, ऐसे वो उलट पुलट बातें हो जाती बहुत, तो उसकी बात यहाँ नहीं है। देखो क्या यानी वो संयम पांचवे से संयम को गया उसका अंतर चालू हो गया, पांचवे का अंतर शुरू होगा, पूर्व कोटि का जो रिमेनिंग काल है 8 वर्ष माइनस कर दो उसमें से 8 वर्ष और पहला जो अंतर मूर्त है तो उर्वरित पूरी लाइफ टाइम तक वे संयम ही रहे, संयम के साथ ही मरेंगे तो उत्कृष्ट आयु वाले देव हो गए। तो कहते हैं कि पूर्व कोटि काल वो संयम के साथ बिताकर 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, तब क्षायिक सम्यक्तों को धारण कर और संयम को परिपालन कर, ये ख्याल है संयम के साथ मरे तो पूरे 33 सागर तक कौन से गुणस्थान में रहे? चौथा गुणस्थान। संयम असंयम को नहीं प्राप्त हुए, वहां से आए चौथा गुणस्थान चल रहे, क्षायिक सम्यक्ति हो गए और चौथे में से फिर संयम को प्राप्त किए, बीच में पांचवे में गए नहीं है। तो संयम को परिपालन कर पुनः एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। एक समय क्यों कम किया? क्यों हमने ये पहले बात आई थी, एक समय कम वाली इतनी आयु क्यों? क्यों वो अधिक काल तक नीचे के गुणस्थानों में रह सकता है, पूरी 33 सागर की आयु हो तो वो जल्दी संयम को प्राप्त करता है। ये बात पहले हमने पढ़ी थी ना, एक समय कम वाली बात। देखो वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और वहां दीर्घ काल तक रहकर संयमासंयम को प्राप्त हुआ। ये बीच में दीर्घ काल तक रहना चाहिए इसलिए वहां एक समय कम कर दिया उसे, यानी बाद में संयमासंयम को हुआ तब जाके अंतर समाप्त हुआ है। पहले भव में उसने वो तो पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया था, बाद में संयम में गया था, संयम के साथ ही मरकर देव हुए, देव में से मनुष्य, मनुष्य में फिर उसने चौथे में से फिर संयम को ही धारण किया था, फिर और एक देव का भव किया 33 सागर का और फिर मनुष्य में आया, क्षायिक समय दृष्टि हुआ, अधिक से अधिक काल तक वो चौथे से फिर संयमासंयम को गया था, ये लास्ट में जाके वो संयमासंयम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ पश्चात संयम को प्राप्त हुआ, अभी उसी भव में मोक्ष जाएगा। प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस अभिक्षायिक किया ना उसने, 33 सागर वाले इतने नहीं कर सकते, 33 सागर वाले इतने नहीं कर सकते, एक समय एक भवावतारी होते, पहले 33 लिखा है परंतु वहाँ भी हाँ की बात नहीं, पहले भी पूरा एक सर्वार सिद्धि वाले जाते हैं, नहीं हुआ अनुत्तर में से, और वो संयम में ज्यादा काल बिताया है उसने, संयम पांचवे में नहीं गया, चौथे में जन्मा और संयम में अधिक से अधिक काल बिताया। क्षयोपशम सम्यक का काल देख, वो मिथ्यात्व का अंतर हमने देखा था, 266 सागर और एक अंतर्मूर्त कम, यहाँ अलग बात है, यहाँ पांचवे वाला है वो छोड़कर छठे में गया है, अभी संयमी हुआ है, अभी अपना क्राइटेरिया तो ज्ञान संबंधी चल रहा है, ज्ञान और संयमासंयम, संयमासंयम का अंतर चालू हो गया है। अधिक से अधिक अंतर लेना है तो बड़ी से बड़ी देवायु लेनी है और वो पहले क्षायिक नहीं हुआ है तो नीचे आया है, फिर पूर्व कोटि के मनुष्य में रहा, वहां भी संयम, पहले जन्मा तो चौथे में फिर बाद में संयम को प्राप्त हुआ, गिरने की बात ही नहीं की क्योंकि संयमासंयम में लाना ही नहीं उसको, फिर दोबारा और 33 सागर में गया और वहां भी एक समय कम वाली आयु बांधी, क्यों? क्योंकि पूरी 33 सागर वाली आयु होती है तो जल्दी वो तो मोक्ष जाने के पहले संयम जल्दी धारण करता है, ऐसा कुछ है, अधिक से अधिक काल इसको बढ़ाने ना, अंतर का काल बढ़ाने। देखो हम यहाँ 117 पृष्ठ पर पश्चात संयम को प्राप्त हुआ, हाँ यानी वो संयमा संयम के बाद क्या किया, फिर संयम को प्राप्त किया, छठे सातवें हजारों बार किया और क्षपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष चला जाएगा। क्षपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के क्षपक श्रेणी संबंधी 6 अंतर्मूर्त मिला है, इस प्रकार 8 वर्ष और 11 अंतर्मूर्तों से कम, 3 पूर्व कोटियों से अधिक। पहला वो जहाँ उसने संयमा संयम का अंतर चालू किया था, वो भी पूर्व कोटि का, बीच में 33 सागर का, फिर एक पूर्व कोटि, फिर 33 सागर, फिर एक पूर्व कोटि, उसमें वो समय वाला कम लेना, और ये तीसरे पूर्व कोटि के अंत में वो मोक्ष चला गया। तो दो बार 33 सागर में, यानी 66 सागर और 3 पूर्व कोटि। इस प्रकार 8 वर्ष और 11 अंतर्मूर्तों से कम, 3 पूर्व कोटियों से अधिक, 66 सागरोपम, मति श्रुत ज्ञान वाले संयता संयतों का उत्कृष्ट अंतर होता है। यानी मति श्रुत ज्ञानी से वो मिथ्यात्व में नहीं जावे, तो ये इतने काल में मोक्ष जाएगा, ऐसा कहते हैं, उत्कृष्ट अंतर है उसका। इस प्रकार से अवधि ज्ञानी संहिता संहित का भी उत्कृष्ट अंतर जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि आदि निबोधिक ज्ञानी के आदि के अंतर्मूर्त से प्रारंभ करके अंतर को प्राप्त कराकर 12 अंतर्मूर्तों से अधिक, वहां 11 लिया था ना, यहाँ 12 अंतर्मूर्त लेना, क्योंकि वो अवधि ज्ञानी के लिए एक अंतर्मूर्त बढ़ाना। 12 अंतर्मूर्तों से अधिक, 8 वर्ष से कम, 3 पूर्व कोटियों से साधिक, 66 सागरोपम काल अंतर होता है, ऐसा कहना चाहिए। अब शंकाकार अपनी कुछ शंका प्रस्तुत कर रहा है, लंबी चौड़ी शंका है। कहता है उपर्युक्त व्याख्यान ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार अल्प अंतर की प्ररूपणा होती है, अतः दीर्घ अंतर के लिए अन्य प्ररूपणा की जाती है। वो कहता है ये जो आपने बताया इतना, तो हम दूसरा और आपको सुझाएंगे, आचार्यों को बताते हैं कि हम आपको बता देते हैं इससे भी ज़्यादा अंतर हो सकता है। मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक जीव संगी समूर्छिम पर्याप्त को में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त को और संयमा संयम को एक साथ प्राप्त हुआ, संयमा संयम के साथ अंतर्मूर्त रहकर असंयत सम्यक दृष्टि हो गया, पुनः यानी चौथे में लाया उसको हमने, मनुष्यों में उत्पन्न कराकर वो संयम में गया था, जा सकता है ना। अवधि ज्ञानी के अवधि ज्ञानी नहीं होगा वो, मेरे ख्याल से देखो ये क्या कहना चाहते, पहले देखो, पुनः पूर्व कोटि काल बिताकर, यानी पांचवे में से चौथे में आया, पूर्व कोटि काल बिताया, 13 सागरोपम की आयु वाले लांतव कापिष्ठ देवों में उत्पन्न हुआ, तीर्यंच भी शतार सहस्रार तक जा सकते ना, तो यहाँ लांतो कापिष्ट में हुई, पश्चात वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वहां पर संयम को परिपालन कर 22 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वहां पर संयम को परिपालन कर और क्षायिक सम्यक्त को धारण कर 31 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। यानी पहले वाले लांतो कापिष्ट की 13, ये तो शंका करके शंका है, फिर बीच में 22 सागरोपम और यहाँ 31 सागरोपम, तत्पश्चात वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, और संसार के अंतर्मूर्त अवशेष रह जाने पर संयमा संयम को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पश्चात विशुद्ध हो अप्रमत्त संयत हुआ, पुनः प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परावर्तनों को करके क्षपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के क्षपक श्रेणी संबंधी 6 अंतर्मूर्त और मिलाए, इस प्रकार 4 अंतर्मूर्तों से कम, 14 अंतर्मूर्तों से कम, 4 पूर्व कोटियों से, यह अपने हमने कौन से 3 पूर्व कोटि देखे थे, यह इसने और एक बढ़ा दी, 14 अंतर्मूर्तों से कम 4 पूर्व कोटियों से साधिक 66 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर होता है। इसी प्रकार से अवधि ज्ञानी संहिता संयत का भी उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि आदि निबोधिक ज्ञान के आदि के अंतर्मूर्ति से आदि करके अंतर को प्राप्त करना चाहिए। पुनः 15 अंतर्मूर्तों से कम 4 पूर्व कोटियों से साधिक 66 सागरोपम उत्पन्न करना चाहिए। तो अभी ये तो शंका करके शंका हुई लंबी चौड़ी, ये अधिक से अधिक हो सकते हैं। आपने आचार्यों ने तो 3 पूर्व कोटियां बताया और ये तो 4 पूर्व कोटि सिद्ध करना चाहते हैं। समाधान, पूर्वोक्त शंका में बतलाया गया यह अंतरकाल घटित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संगी समूर्छिम पर्याप्तकों में संयमासंयम के समान अवधि ज्ञान और उपशम संयुक्त की संभवता का अभाव है। यानी समूर्छिम जो है जीव, उसमें उपशम संयुक्त नहीं हो सकता। उपशम संयुक्त का यहाँ क्या लिखा है देखो, अवधि ज्ञानी और उपशम संयुक्त नहीं हो सकता है। हाँ सम, हाँ संयम असंयम तो होगा ना, जैसे अवधि ज्ञान और उपशम संयुक्त की संभवता का अभाव है। अवधि ज्ञान और उपशम संयुक्त तो उसमें नहीं हो सकता है। वो तो हमने पर्याप्त और गर्भज होता है वो तो बात वहाँ की थी, यानी अवधि ज्ञान भी नहीं होता है और उपशम संयुक्त भी नहीं होता है, ये बात हमने वहाँ देखी थी। हाँ संयम असंयम हो सकता है। देखो देखो यहाँ आगे के प्रश्न में उसका उत्तर है। देखो शंका, यह कैसे जाना जाता है कि संगी समूर्छिम पर्याप्तक जीवों में अवधि ज्ञान और उपशम संयुक्त का अभाव है? प्रश्न तो उतना ही पूछा है ना। तो क्या कहते, पंचेंद्रियों में समाधान, दर्शन मोह का उपशमन करता हुआ गर्भोत्पन्न जीवों में ही उपशमन करता है, समूर्छिमों में नहीं। यानी उपशमिक सम्यक तो गर्भजों में ही, गर्भज तिर्यंच मनुष्यों में ही प्राप्त हो सकता है, समूर्छिन तिर्यंचों में नहीं हो सकता। इस प्रकार के चूलिका सूत्र से जाना जाता है। तो कहते हैं संगी समूर्छन जीवों में अवधि ज्ञान का अभाव कैसे जाना जाता है? यानी उपशम सम्यक तो नहीं होता है वो तो जान गए, अवधि ज्ञान भी नहीं होता ये कैसे जाना? तो आचार्य कहते हैं क्योंकि समूर्छिमों में अवधि ज्ञान को उत्पन्न करा के अंतर के प्ररूपण करने वाले आचार्यों का अभाव है। अवधि ज्ञानी समूर्छिन अवधि ज्ञानियों में अंतर पड़ता है ऐसे कहने वाले कोई आचार्य नहीं है, आचार्यों का अभाव होता है। अर्थात किसी भी आचार्य ने इस प्रकार अंतर की प्ररूपणा नहीं की है। अब कहते संगी समूर्छिन जीवों में अवधि ज्ञान का अभाव भले ही रहा आवे, एक एक बात मानता है फिर भी अभी शंका छोड़ने को तैयार नहीं, किंतु ओघ प्ररूपणा में कहे गए और संगी समूर्छन जीवों में संभव ऐसे आभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान का ही यह अंतर है, ऐसा क्यों नहीं कहते? यानी वो खाली आभिनिबोधिक और श्रुत ज्ञान का ही अंतर है ऐसा क्यों नहीं कहते? तो उसका संदेह, क्योंकि उनमें उत्पन्न होने वाले जीवों के इस प्रकार संभव नहीं है। तो वो भी क्यों संभव नहीं कहते, यह भी कैसे जाना जाता है? ये समूर्छिनों को क्यों नहीं लिया, उसके तो यही हट है, उसको लेना चाहिए। उसका समाधान, क्योंकि इस प्रकार का व्याख्यान नहीं पाया जाता है, अथवा जान करके इसका व्याख्यान करना चाहिए। बाकी बात हम कल चर्चा करेंगे इसके। जावाणी के ज्ञान